From the conference center.
मोमन टैबनेकल गायक मंडली द्वारा इस सभा के संगीत प्रदान किया गया है. गिरजा के सदस्य और अधिकारी दुनिया के सभी भागों से आए हैं ताकि अपने गिरजा नेताओं से सलाह और आदेश प्राप्त करें.
This broadcast is for
distribution द्वारा इस प्रसारण को जनता सेवा के रूप में पूर्ति किया गई है. इस कार्य को कोई भी प्रदान अभिलेखन प्रतिलेखन या अन्य इस्तेमाल बिना लिखित आमंत्रित के मना है. प्रेसिडेंट हेनरी बी आयरिंग पहला कैंसलर के पहली सरकार के गिरजाघर के इस सभा का संचालन करेंगे. भाई और बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के गिरजा अंतिम दिनों के संत का 181st अर्धवार्षिक महासम्मेलन की पहले बैठक में, और एक खास स्वागत करते हैं उन सदस्यों और दोस्तों को जो यहाँ इस सम्मेलन केंद्र और विश्वास भर में जहाँ कहीं भी भाग ले रहे हैं. प्रधान थॉमस एस मॉन्सन जो इस सम्मेलन में नेतृत्व करता है ने कहा है कि मैं इस बैठक का संचालन करूं. अब महा अधिकारी और महा सहायक अधिकारियों को आभार प्रकट करते हैं जो इस सम्मेलन में उपस्थित है. हम कई दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन और सैटेलाइट और केबल सिस्टम के आभारी हैं जिन्होंने जन सेवा के लिए अपने संविधान को प्रदान किया ताकि इस सम्मेलन को दुनिया भर पहुंचाया जा सके. इस बैठक के संगीत जो मैक वुलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन में टैबरनेकल क्वायर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिनके साथ ओगन पर होगा रिचर्ड एलियट और एंड्रू अंसवर्थ. गायक मंडली ने इस बैठक के शुरुआत से इसे गाने द्वारा द मोमेंट ब्रेक्स और आप गाएंगे विद सॉन्ग्स ऑफ प्राइज. सत्र के एल्डर गैरी जी जे कोलमन द्वारा प्रार्थना की जाएगी.
We sing songs of praise and gratitude. हे हमारे स्वर्ग पिता, आपके नाम पवित्रता है। आपके पुत्र जो हम सबको लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं इस सुसमाचार के लिए जो आपने फिर से पुनर्स्थापित किया है, और मंदिर जो आपने लाया है, और प्रार्थना करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए कि आपके पवित्र आत्मा हमारे प्रोफेट के साथ रहे, और उनके काउंसलों के साथ, और 12 के साथ, और सभी आदमियों के साथ जो हम लोगों को शिक्षा देगा, हम लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, और हम लोगों के लिए गाना गाएंगे, और हम आपके जय जयकार करते हैं आपके पुत्र के नाम से, और प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके शब्द सभी लोगों के ऊपर आए, और आपके आज्ञा हो कि आपके पुत्र आए और हमको बचाए कठिन दिनों में। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
We will now be pleased to hear from Elder Richard G.
Scott. देवताओं की परिषद के एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट से के सुनेंगे, उसके टिप्पणियों के बाद गायक मंडली गाएंगे We ever pray for thee.
Those of us who
come to this pulpit during conference feel the power of your prayers. जब हम इस पल्पिट पे आते हैं तो हम यीशु मसीह के शक्तिशाली प्राप्त करते हैं। हमारे स्वर्ग के पिता जानते हैं कि हमें परिचर्याकाल के समय में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इस मुसीबतों में से कुछ बहुत शक्तिमान हो सकता है। उसमें उसे अवसर दिया कि हम उसकी मदद से परिचर्याकाल के समय सफल हो सके। सालों से स्वर्ग के पिता ने आदमी और औरत के प्रेरणा से चुना था कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से जिंदगी के बहुत कठिन मुसीबतों के हल मिले। उसने उन अधिकारी नौकरों को प्रेरित किया और औजारों को एक पुस्तिका में लिखने को उसके उन बच्चों के लिए जो उसके खुशहाली का योगना और उसके एक लौता पुत्र यीशु मसीह का विश्वास करते हैं। हम इस मार्गदर्शन को किसी भी समय कर सकती है। खजाने से जैसे हम अच्छे कार्य करते हैं, वैसे ही पूरे और नए नियमों धर्मशास्त्र डॉक्ट्रिन कवेनेंट्स ऑफ पेलो ग्रेट प्राइस से, क्योंकि धर्मशास्त्र पवित्र आत्मा के प्रेरित वार्तालाप के द्वारा मिलती है, वह शुद्ध सच्चाई है। हमें किसी कार्य के आदेश का मानता का विचार को जानना जरूरी नहीं है। जब से पवित्र आत्मा अवजार बनने जिसने आगे बढ़ाया और प्रेरित किया उन्हें जिसने धर्मशास्त्र को लिखा है, धर्मशास्त्र छोटे मात्रा के ज्योति होते हैं जो हमारे मान को बढ़ाते हैं और हमें मार्गदर्शन के लिए तैयार करते हैं और स्वर्ग के प्रेरित करते हैं। वह चाबी बन सकते हैं हमारे स्वर्ग के पिता और उसके एक लौटे पुत्र यीशु मसीह के साथ वार्तालाप में। धर्मशास्त्र जब सही तरह से देखा जाए हमारे वचनों को अधिकार देता है। वह सच्चे मित्र बन सकते हैं जो कहीं भी और किसी समय हो सकती है। वह हमेशा हाजिर रहते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। उनके कार्य सच्चाई के मूल प्रदान करते हैं जो पवित्र आत्मा द्वारा संकेत दे सकती है। सीखने, सोचने, ढूंढने और धर्मशास्त्र को याद करना अलमारी को मित्रों से भरने की तरह है। आदर्श और सच्चाई किसी भी समय और कहीं पर दिन भी दुनिया में मिल सकते हैं। महाशक्ति धर्मशास्त्र को याद करने से मिल सकती है। धर्मशास्त्र को याद रखने के नए मित्र बनाने की तरह है। यह उस तरह है कि किसी नए व्यक्ति के बारे में मैं जानना जो जरूरत के समय मदद कर सकता है, जो प्रेरणा और दिलासा और जरूरी बदलाव के लिए कार्य का कारण बन सकता है। उदाहरण के रूप में मैं ज्ञान में यह साम में लिए एक शक्ति और समझ का तरीका है। प्रत्येक और कुछ उसमें है, प्रभु ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और पहाड़ों के ऊपर स्थिर किया है। प्रभु के पवित्र पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकते हैं, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। वो प्रभु की ओर से आशीष पाएगा और अपने उदारा करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। एक धर्मशास्त्र को याद करो जो तुम्हें जिंदगी में महान मार्गदर्शन देती है। धर्मशास्त्र सहायता क्या मूल बना सकती है। वे हमें बहुत बड़े साधन मित्र के रूप में प्रदान करता है, जो हमें मदद के लिए तैयार रहते हैं और जो मदद कर सकते हैं। एक ज्ञान की धर्मशास्त्र अंत तक की मित्र रहते हैं, जो समय के परिवर्तन के साथ कम होती है। एक धर्मशास्त्र को याद करना प्रकट होने के क्या क्रिया और मार्गदर्शन और पवित्र आत्मा के प्रेरणा को खोलने की चाबी बन सकती है। धर्मशास्त्र एक प्रश्न आत्मा को शांत कर सकती है, शांति, आशा और एक महाक्षमता को पुनस्थापित कर सकती है। जिंदगी के चुनौतियों के जलने से उनके पास मजबूत शक्ति है, गंभीर चुनौतियों के गुजरने के लिए जब उदारकर्ता में विश्वास होता है। वह शारीरिक रोग भी ठीक कर देती है। धर्मशास्त्र हमारे जिंदगी में दूसरे मतलब और दूसरे समय पर जरूरत का अनुसार बतलाता सकती है। एक धर्मशास्त्र को हमें कई बार पढ़ा होगा नहीं और दूसरे मतलबों को भी बतला सकती है, जो नया रहा कर और गहरी पहुंच वाला होगा। तुम किस तरह धर्मशास्त्र को आत्मिक रूप से कैसे इस्तेमाल करते हो? क्या तुम मार्जिन में निशान लगाते हो धर्मशास्त्र के मार्गदर्शन को याद करने के लिए? क्या तुम सब सारे अच्छे कार्यों को इस्तेमाल करते हो पुराने नियम के साथ? मैंने पुराने नियम के पहनों में अनमोल सच्चाई को पाया है, जो वे सच्चाई के जरूरी भाग है, जो मेरे जिंदगी को मार्गदर्शन देती है और एक साधन की तरह काम करती है। जब मैं सुसमाचार के संदेश को दूसरों से बांटती हूँ, उस कारण से मैं पुराने नियम को चाहती हूँ। मैं सच्चाई को अनमोल गाने को पाने में पहला पाती हूँ। और सैमुअल ने कहा कि प्रभु हम्बलियों और मेलबालियों को उतना प्रस्तुत होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रस्तुत होती है। तू अपनी समझ का सहारा ले लेना, वर्ण संपूर्ण मान से प्रभु पर भरोसा करना, उसी को समारण रखे सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग मिलेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हे मेरे पुत्र, प्रभु की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वहां तुझे डांटे तब वो बुरा ना मानना, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसे डांटता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि है, बुद्धि पाई। नया नियम वे एक कीमत का मूल्य सच्चाई है। यीशु ने उसका कहा, तुम परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण अपनी सारी बुद्धि से साथ प्रेम करें। यही दो आज्ञानसारी व्यवस्था और भविष्य व्यक्ताओं का आधार ही है। और प्रभु ने कहा, साइमन साइमन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं का समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता ना रहे। और जब तू अपने भाइयों को स्थिर करना, उनसे उसे कहा, ए प्रभु, मैंने तेरे साथ बंद जाने बरान मरने को भी तैयार होना। और उसने कहा, ए पिता, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग भाग ना देगा जब तू तीन बार मेरा इनकार का ना कर लेगा। तब एक दासी उसे आगे उजाले में बाती देखकर उसी उसकी ओर टक्कर करने लगी, परंतु उसने यह कहकर इनकार किया। थोड़ी देर बाद उसके किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। कोई घंटे भर एक और मनुष्य दर्द के खाने लगे, और प्रभु ने घूमकर पीटर को और देखा, और पीटर को प्रभु की ओर वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग का भाग देने से पहले तू तीन बार मुझे इनकार करेगा। और पीटर बाहर निकल कर फट कर रोया। एक DNC के धर्मशास्त्र ने मेरे जिंदगी को बहुत आशीर्वाद दिया है। इस मैंने कहा गया है कि हमें उसके शब्दों को ढूंढ कर बतलाना नहीं है जब तक कि हमें खुद उसके शब्दों को तलाश नहीं किया है, फिर हम उसके बारे में सरल से बतला सकेंगे। और अगर हम चाहे, हमारे पास उसकी आत्मा और उसकी शब्द हो सकती है। मेरे फैसले में मोगमन की धर्मशास्त्र सच्चाई शिकलता है, विचारता दयालु और शक्ति है। और अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम विनित बनो, विनम्र और नेक बनो, दूसरों के अनुराध के प्रति सरल बनो, सचलता से भर रहो, और कष्टों का सामान करते रहो, सभी बातों में शांत रहो, हर समय परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में कर्म रखो। जिन आत्मिक और शारीरिक चीजों के तुम्हें आवश्यकता को उसे मांगो, और जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। और उदारकर्ता का प्रभाव लंबा और दयालु होता है, और द्वेष रहित होता है, अहंकार में बोलता नहीं है, स्वार्थ रहता है होता है, आसानी से क्रोधित नहीं होता, बुराई नहीं सोचता, पापों में आनंद नहीं मानता, परंतु सच्चाई में आनंद होता है। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, बंधुओं, और तुम्हारे पास उदारता नहीं है तब तुम कुछ भी नहीं हो, परंतु उदारता मसीह का सच्चा प्रेम है। और यह अंतिम दिन को जिसके पास मिलेगा उसका भला होगा। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, अपने हृदय की संपूर्ण शक्ति के द्वारा इस प्रेम को संपूर्ण होने के लिए पिता से प्रार्थना करो, जिसे कि उसने उन लोगों को दान से दिया है जो उसके पिता यीशु मसीह के सच्चे अनुगामी है, जिससे कि वो प्रकट होता होगा जब तुम भी उसकी समय होगा, जिसे कि हमें ये आशा प्राप्त होगी, और हम उसी प्रकार निर्मल किए जाएंगे जैसे कि वो सिवाय निर्मल है। मेरी अनमोल पत्नी जिनीन मोमन की धर्मशास्त्र को बहुत पसंद करती है, अपने युवा में जवान लड़की की तरह वो उसकी जिंदगी का मोल बन गया। वो एक गवाही और शिक्षा शान का स्रोत था। यूनाइटेड स्टेट्स में पूरे समय के प्रचार के दौरान जब हमें कोर्डोबा अर्जेंटीना में अपने मिशन की सेवा को किया था, उसने अपने पढ़ने की कोशिश में ज्यादा मोमन के धर्मशास्त्र के इस्तेमाल को प्रोत्साहन किया। जिन्होंने अपने हाल की ये जिंदगी में जाना की हो, हमेशा मोमन के धर्मशास्त्र को पढ़ते हुए उन्हें प्रभु की आत्मा को और ज्यादा पाते हैं।
I don't know how many years as
हर साल कई सालों के तक मुझे पता नहीं कितना जब तक कि साल का अंत हुआ मैंने उसे छुपे बैठे हुए देखा। सावधानी से मोमन के धर्मशास्त्र को पूरी खत्म करते हुए 12 साल के अंत से पहले 1991 में मैंने अपने परिवार के बढ़दिन पर एक खास तोहफा देना चाहता था। मैंने अपने व्यक्तिगत डायरी में लिखा कि दिसंबर 1891 12 को 12:38 PM में मैंने अपने परिवार के लिए मोमन के धर्मशास्त्र को बतलाते हुए लिखा को बयान किया था। ये एक अनुभव था जिसे मेरे गवाही को इस दिव्य कार्य में बढ़ाया था और मुझे में और चाहत बढ़ाया उसके पन्नों को जने मैं धर्मशास्त्र के अच्छाई को सिख पर प्रभु के सेवा में इस्तेमाल करने के लिए। मैं अपने आत्मा की शक्ति से बयान करता हूँ ये सच्चा है कि वह इज़राइल के घरों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार किया गया है और इज़राइल का घर के सारे दूसरे भाग दुनिया भर में फैल गया। सब जो उसके संदेश को विनम्रता के से सीखेंगे, यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, उसके सच्चाई को जानेंगे और ज्यादा खुशहाली को पाने के लिए खजाने को पाएंगे, शांति और जिंदगी में प्राप्त करेंगे। मैंने सबसे पवित्र करकी से बयान करता हूँ कि यह किताब सच्चाई है। हम सब आप अपने आप आशीर्वाद के प्रभाव को धर्मशास्त्र के परिणाम को सीखने के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Thank you.
We shall now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson.
Sister Barbara Thompson. Jo sahexan stekar mahasadikste me dusre salaka hai. We will unke baad ham Elder L. Whitney Clayton jo satar ke pradan hai se sunenge.
Many years ago, when I was a college student,
कई साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, मैं महासम्मेलन को रेडियो पर सुन रही थी क्योंकि हमारे कमरे में टीवी नहीं था. सम्मेलन में भाषण देने वाले शानदार थे और मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रही थी. मुझे याद है जब एक महाअधिकार ने उद्धारकर्ता और उसके देखरेख के बारे में बातें किया था और एक तेज गवाही को बयान दिया था. पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा को गवाही दिया कि उसने सच्चाई बयान किया था. अब मुझे कोई भी संदेह नहीं था कि उद्धारकर्ता जीवित है. मैं व्यक्तिगत प्रकाशन को अनुभव कर रही थी और मैं ये जान गई कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है. जब मैं 8 साल की थी तब बपतिस्मा हुई और पवित्र आत्मा मिली. वो उस समय अनोखा आशीर्वाद था मगर वो बहुत जरूरी हो गया अभी जब मैं बड़ी हो गई और पवित्र आत्मा के तोहफे को उसके बाद कई तरीके से अनुभव किया. हम बचपन से जवान होते हैं और फिर युवक होते हैं. हमारे जीवन में चुनौती और अनुभव होते हैं जो हमें याद दिलाता है कि हमें दिव्य मदद की जरूरत है जो पवित्र आत्मा से मिलती है. जब मुसीबतें आती है हम अपने से पूछते हैं क्या जवाब है मेरे मुसीबत का और किस तरह मैं जान सकती हूँ कि मुझे क्या करना है. मैं हमेशा मोमन धर्मशास्त्र में लिहाय अपने परिवार को सुसमाचार को पढ़ाने के विषय को याद करती हूँ. उसने उनसे कई प्रकाशन को बताया और अंतिम दिनों में होने वाले चीजों के शिक्षण को. निफाय ने प्रभु से मार्गदर्शन दिखलाने को कहा ताकि वो अपने पिता के शिक्षण को और ज्यादा समझ सकते. उससे प्रेरणा आशीर्वाद मिली और प्रेरणा मिली कि उसके पिता का शिक्षण सच्चा है जिसने निफाय को मदद किया प्रभु के आज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए और जिंदगी को सच्चाई से जीने के लिए. दूसरे और उसके भाई एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे क्योंकि वे अपने पिता के शिक्षण को समझ नहीं रहे थे. फिर निफाय ने बहुत जरूरी सवाल को पूछा, क्या तुमने इस विषय पर परमेश्वर से जांच की? और उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि ऐसी बातों की जानकारी परमेश्वर हमको नहीं देता. निफाय ने उस अवसर पर अपने भाइयों को शिक्षा दिया कि कैसे व्यक्तिगत प्रकाशन को प्राप्त किया जा सकता है. उसने कहा, क्या तुम्हें वो बातें याद नहीं है जिन्हें प्रभु ने कही थी? अगर तुम अपने हृदय को कठोर नहीं करो और मुझसे विश्वास में इस आशा से पूछो कि तुम्हें उत्तर मिलेगा और लगन के साथ तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तब निश्चित ही तुमको इन बातों की जानकारी कराई जाएगी. इस तरीके को करने का मतलब ये नहीं कि जब सभी समय परमेश्वर से हम सवाल पूछते हैं जवाब तुरंत ही मिलेगा सभी चीजों को किस तरह करने के साथ. फिर भी इसका मतलब है कि अगर हम वादों को पूरी तरह से निभाते हैं और विश्वास से पूछते हैं जवाब प्रभु के तरीके से मिलेगा और उसके समय पर. जब मैं छोटी थी मैंने सोचा कि व्यक्तिगत प्रहाशन या प्रार्थना के जवाब सुनाई देने योग्य से मिलेगा. वास्तव में कुछ प्रशासन उसी आवाज को सुनने से मिलती है. फिर भी मैंने सीखा है कि आत्मा कई तरीके से बतलाती है. धर्मशास्त्र और वादे भाग 6 बतलाती है कि कई तरीकों से प्रशासन को प्राप्त कर सकते हैं. प्रभु ने ओलिवा कार्डरी को बतलाया कि उसने प्रभु से पूछा है और जब भी उसने पूछा उसके आत्मा द्वारा सूचना मिली. प्रभु ने उसके समझ को बढ़ावा की शक्ति दी. प्रभु ने पूछा कि क्या उसने अपने मन को शांति दी उस वास्तु के बारे में और दूसरे सुसमाचार में प्रशासन को और ज्यादा प्राप्त करने के सिखलाते हैं. प्रभु हमारे मन और हृदय में पवित्र आत्मा से बदलाएगा जो हमारे ऊपर आएगा और हमें हृदय में रहेगा। ये प्रशासन की आत्मा है। प्रभु ने कहा तुम्हारे दिल में जल सा होगा, इसीलिए तुम ये महसूस करेगी कि वो सच्चा है। प्रभु ने कहा कि वो हमें अपनी आत्मा देगा जो हमारे मन में उजियाला करेगा, जो हमारे आत्मा को खुशी से भर देगा। ज्यादातर व्यक्तिगत प्रशासन प्राप्त होगा जब हम सुसमाचार को पढ़ेंगे, भविष्यवक्ता और गिरजाघर के नेताओं को सुनने और उनके चेला बने और विश्वास और सच्चाई से जिंदगी को ढूंढना। पुनर्स्थापित के हाल की ही दिनों में कई सदस्यों को मेहनत से प्रशासन प्राप्त हुई और आशीर्वाद मिली और प्रेरणा मिली कि क्या करना है। बहन इलाइजा आर स्नो को भविष्य वक्ता ब्रिंगम यंग द्वारा आज्ञा मिली कि गिरजाघर के बहनों को मदद करे आगे बढ़ने में और पढ़ने में। उसने सिखलाया कि हर एक महिला को अपने जिंदगी, अपने परिवार और गिरजाघर के जिम्मेदारियों में प्रेरणा से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकती है। उसने कहा बहन को बतलाओ कि आगे बढ़ो और अपने जिम्मेदारियों को पूरा करो विनम्रता और विश्वास से, और परमेश्वर की का आत्मा पर उन पर होगा और उन्हें उनके कार्य में आशीर्वाद प्राप्त होगी। बहन स्नो ने बहन को सिखलाया कि पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन को ढूंढना। उसने कहा कि पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय को पूरा करती और भरती है सभी चीजों में और सभी कलिपन को भरती है। प्रधान उगडव ने हमें सिखलाया कि प्रशासन और गवाही हर समय खुशी से नहीं आती, क्योंकि कईयों के लिए गवाही धीरे से मिलती है। छोटा सा भाग एक समय, उसने आगे कहा हमें व्यक्तिगत प्रेरणा के ज्ञान को सच्चाई से ढूंढना चाहिए। हमें प्रभु से हमारे मन और आत्मा के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए विश्वास के साथ, जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा देखरेख को देगा और इच्छापान करेगा। हमारी गवाही बढ़ती है और हमें मजबूत करती है हमारे हर दिन के चुनौती को झेलने के लिए। कुछ लोग मुश्किल तरह से बीमारियों से गुजरते हैं, कुछ पैसे की मुसीबतों का सामना करते हैं, दूसरों को शादीशुदा जिंदगी या अपने बच्चों के साथ चुनौती का, कुछ अकेलापन या जो पूरा नहीं पूरी हुई आशियों और सपनों से झेलते हैं। हमारे गवाही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और मुक्ति के योगना के ज्ञान से हमें मदद करेगा इन मुसीबतों और कठिनाइयों से बाहर निकलने में। टॉटस इन माय किंगडम की किताब में हमने बहन हेजविक के बारे में पढ़ा, एक जर्मनी की महिला जिसने बहुत दुख झेल वर्ल्ड वॉर टू में रही। उसके प्यार और दयालु के कारण और उसके अपने बहुत ज्यादा जरूरत में उसने अपने भोजन को भूखे लड़ाई के बंदी के साथ खुशी से बांटा। क्योंकि हमारे पास सच्ची गवाही है, उसके मतलब नहीं कि वो हमेशा रहेगा। हमें उसे बढ़ाना और मजबूत करना चाहिए ताकि वो उसे हमारे साथ रहने की शक्ति मिले। ये एक कारण है कि क्यों हम समय हर समय पर मिलते हैं, ताकि हम प्रभु भोज को ले सके, अपने वादों को दोहरा सके और परमेश्वर के सच्चे वचनों को पोषण मिल सके। वो परमेश्वर की सच्ची शब्द है जो हमें लगातार प्रार्थना करती है। एल्डर डेविड ए. बेडना ने हमें सिखलाया कि जब तुम अच्छी तरह से ढूंढोगे और पवित्र आत्मा से प्रशासन को मांगोगे, मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि प्रभु के कर्मों पर चलो। कभी कभी आत्मा तुरंत और बहुत ही कार्य करती है, कुछ समय धीरे धीरे और कई बार कोमलता से। चाहे जिस रूप में आशीर्वाद मिलती है, अंत जगत के प्रकाश से तुम्हारी आत्मा प्रकाशित होगी, तुम्हारी समझ प्रकाशित होगी और तुम्हारे परिवार को बचाएगा। प्रभु हमें सहारा के साथ आशीर्वाद, ज्ञान और मार्गदर्शन हमारी जिंदगी में देना चाहता है। वो अपनी आत्मा को देना चाहता है, फिर व्यक्तिगत प्रशासन को प्राप्त करने के लिए हमें चाहना चाहिए। हमें अपने हृदय को कठोर मत बनाओ और फिर हमें विश्वास से पूछना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ कि जवाब मिलेगा, और फिर परमेश्वर के वादे को मेहनत से पूरा करो। फिर जब हम अपने सवालों के जवाब को ढूंढेंगे, वो हमें अपने आत्मा से के साथ आशीर्वाद देगा। इसको मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, आमीन।
मैंने जवान प्रचारक की तरह में सेवा किया कई महीनों तक लीमा प्रमुख के स्थान पर। परिणाम की तरह मैंने लीमा प्लाजा दे अरमांस में कई समाचार संकट किया। सरकारी महार पेरू के प्रधान का अफसर घर का घर और दफ्तर है। उस इमारत के सामने मेरे साथियों और मैं आमंत्रित किया लोगों को प्लाजा में समाचार को सुनने में। मैंने हमेशा सोचा कि कैसे होगा और महाल में जाने में, मगर उसे करना ख्याल पूरा ना हो होना लगता था। पिछले साल 12 के प्रसिद्ध एल्डर डी टोड क्रिस्टोफर्सन और मैं एलन गार्सिया से मिला, जो उस समय पेरू अगवा करते थे सरकार महाल में। हमें उनसे उसके सुंदर कमरे दिखलाए गए और प्रधान गार्सिया बहुत ही अच्छी तरह से मलन हुआ। पेरू में चीज़ों बदल गई थी जब से मैं प्रचार करता था, खास तौर पर गिरजाघर भी। वहां पर लगभग 11,000 गिरजाघर के सदस्य उस समय सिर्फ एक स्टेक में थे। आज वहां पर 300,000 सदस्य और लगभग 100 स्टेक्स हैं। शहरों में जहां थोड़े सदस्य थे, सरकारी स्टेक्स और मनमोहक सभा घरों में जमीन को सुंदर करती थी, और दुनिया भर के सभी देशों में ऐसा ही हो रहा था। गिरजाघर की बढ़ती को समझने की जरूरत है। मैं इसका शुरुआत करता हूँ पुराने नियम के विश्वास भविष्यवाणी के साथ। डेनियल बेबीलोन का हिब्रू नौकर था। उससे अवसर मिलती थी कि वो राजा नबूकदनेस्सर के सामने सपने को अनुवाद करे। डेनियल ने परमेश्वर को उस सपने को उससे प्रकट करने और अनुवाद करने को कहा, और उसी प्रार्थना को जवाब मिला। उसने नबूकदनेस्सर को बतलाया कि परंतु भेड़ों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने राजा नबूकदनेस्सर को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तुम्हारे सिर की दृष्टि जो तुम्हारे कमरे में हो वह यहाँ है। उसने कहा कि राजा ने एक दौरान मूर्ति की को देखा जो खोपड़ी दर्द प्रतिमा हाथों रान और पैर के रूप में था, या पहाड़ से एक पहाड़ को बिना हाथों के टूटकर गिरते और लुढ़कते आकार में बढ़ते हुए। वह पत्थर और मूर्ति से टकराया और चूर चूर हो गया, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। डेनियल ने समझाया कि वो मूर्ति आने वाली राजनीति के राज्य को दर्शती और राजाओं के दिनों में स्वर्ग के परमेश्वर एक ऐसा राज्य उड़ाए करेगा जो अंतकाल तक ना टूटेगा, चूर चूर करेगा और उनका अंत कर देला डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। अब मैं अपने पूरे समय को सुसमाचार को बतलाऊंगा। 1823 में मोर्नाय देवदूत ने सबसे पहले जोसेफ स्मिथ के पास उपस्थित हुआ था और उसे कहा कि परमेश्वर के पास उनके लिए काम है जो उससे करना है, और उसका नाम अच्छा और बुरे के लिए सभी देशों जाति और भविष्यों में के लिए लिया जाएगा। मोर्नाय खास संदेश ने जोसेफ को जरूर हैरान किया होगा, जो सिर्फ 17 साल का था। 1831 में प्रभु ने जोसेफ को बताया कि परमेश्वर का राज्य की चाबियों को दोबारा धरती पर मनुष्य को पुनः स्थापित किया जाएगा। उसने कहा कि सुसमाचार धरती में जिस तरह वह पत्थर जो बिना हाथों के पहाड़ से टूटता है जब तक कि पृथ्वी भर से फैल जाती नहीं, जैसे डेनियल ने नबूकदनेस्सर को बतलाया। 1894 में प्रधान विल्फर्ड वुडरफ ने अपने एक अनुभव को बतलाया जब वो 1834 में नया सदस्य का कैटलैंड के नज़दीक एक पुरोहिती के सभा में भाग लेते समय उसने बतलाया। भविष्यवक्ता ने कहा कि जिनके पास पुरोहिती वो है वो छोटे से लकड़ी से बने स्कूल घर में जाए जो वहाँ पर था। वो छोटा सा घर था। जब हम साथ मिले, भविष्यवक्ता ने इसराइल के एल्डर्स को बुलाया इस कार्य की गवाही को बयान करने के लिए। जब वे भूल चुके थे, भविष्यवक्ता ने कहा कि भाइयों, मैं तुम्हारी गवाहियों को आज रात यहाँ सुनकर बहुत आध्यात्मिक विकास किया है और अनुधृति को पाया है, मगर मैं परमेश्वर से पहले तुमसे बतलाना चाहता हूँ कि गिरजाघर और परमेश्वर योजना के आने वाली जिंदगी की उनकी समझ नए पैदा हुए शिशु के आने वाले जिंदगी की तरह है। ये भविष्यवाणी के कहती है, परमेश्वर की राज्य उस तरह उस पत्थर जो पहाड़ से टूटकर है तरह है जब तक कि पृथ्वी भर में नहीं है। जोसेफ स्मिथ का नाम दुनिया में लिया जाएगा। छोटा सा विश्वासी दल जिंदगी गुजारने के लिए मुश्किल से कमाया अमेरिका के भरे हुए स्थानों में और हर एक समय विरोध से बचने के लिए विश्वास के मूल की तरह नहीं लगा कि वो एक अंतरराष्ट्रीय तक पहुंचेंगे और सभी जगह के लिए को बदलेगा, मगर यही है जो हुआ था। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। आज जायन के 23 स्टेक्स है बुएनोस एरियस में कई दर्शकों के साथ और अर्जेंटीना के शहरों और नगरों में गिरजाघर के दसवां के हजारों के सदस्य थे। आज दक्षिण अमेरिका में 600 से ज्यादा स्टेक्स है कि कई करोड़ बदलते हुए गिरजाघर के सदस्य। जब हम तुलना करते हैं, हम परमेश्वर की राज्य को भर रही है और जोसेफ स्मिथ का नाम देशों में दोनों हम लोगों और उसके निंदक से बतलाया जा रहा है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा। आज दुनिया भर के गिरजाघर में 3000 स्टेक्स है जो बोस्टन से लेकर बैंकॉक और मेक्सिको शहर से लेकर मेक्सिको पर है। 29,000 वार्ड्स और शाखाएं होने वाली है। कई देशों में पक्का स्टेक्स है। ये भविष्यवक्ता दुनिया में फैलने और दुनिया भर में जाने में है। ये प्रधान गोर्डन बी हिंकली ने आलोचना किया। ये कहा गया था कि एक समय उसके नागरों के कारण दुनिया भर के सही भागों में दिन के सारे समय में वहां पर दिन का उजाला नहीं था। ब्रिटिश राज्य को वो राज्य अब कम है, मगर यह सच है कि प्रभु ने के इस कार्य में कभी शाम नहीं होती जबकि दुनिया भर के लोगों को प्रभावित हुआ है। आज हम देखते हैं कि मर्म धर्म शास्त्र की पूर्ति की भविष्यवाणी नजदीक आ रही है और जब वो दिन आएगा तब राजा अपने मुंह बंद कर लेगा और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उनने सुनने भी ना होती है, क्योंकि उस दिन मेरे पिता एक काम करेगा जो कि उसमें एक महान और आश्चर्यजनक काम होगा। ये प्रभु के कार्य महान हैं या बतलाने वाली है, मगर ये आगे बढ़ती है। सभी मनुष्यों को राजनीतिक, सांसारिक और आत्मिक नेताओं को अंदाज किए बगैर या एक दिल बदलता है और एक परिवार के एक समय चुपके और विमंत्रता से उसका परिवार पवित्र संदेश सही सभी जगह को मनुष्य को आशीर्वाद करता है। मॉर्मन की धर्मशास्त्र की एक अध्याय आज के गिरजाघर का बहुत बढ़ती की चाबी को प्रदान करती है। और मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि वह समय आएगा जबकि उधारक का ज्ञान हर एक राष्ट्र जाति भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों और लोगों में फैलेगा। हमारी सबसे ज़रूरी संदेश है जो हम दोनों को दुनिया भर में सभी स्थान पर पवित्र से अधिकार और आज्ञाओं का साथ लेता है, उद्धार करता है। वह हमारे पवित्र परिवारों के लिए प्रायश्चित किया। वो अनुपम संदेश जो हम घोषित करते हैं परमेश्वर से। मैं गवाही देता हूँ कि वो अपने पिता के साथ जोसेफ स्मिथ के पास आया था। पिता के मार्गदर्शन पर उसने अपने सुसमाचार को इस धरती पर दोबारा स्थापित किया है। उसने धरती पर दोबारा देवदूत भविष्यवक्ताओं और पुरोहितों चाबियों को भेजा। वो अपने गिरजाघर को अपने जीवित भविष्यवक्ता प्रधान थॉमस एस मॉन्सन द्वारा आगे बढ़ाते हैं। उसका गिरजाघर है कि पहाड़ से पत्थर को बिना हाथों से काट कर निकालना जो दुनिया भर में फैलता है। हम जोसेफ स्मिथ के लिए भारी है और संदेह से देखते हैं कि जैसे उसके नाम को सम्मान मिलता है मगर हम जानते हैं कि उसकी महान कार्य उसके बारे में नहीं है। ये शक्तिमान और उनका पुत्र शांति का युवराज का कार्य है। मैं गवाही देता हूँ यीशु मसीह ही उद्धार करता है, तुम्हारे साथ में है। ये पवित्र वह समय आएगा कि उद्धारकर्ता का ज्ञान बढ़ती सभी देशों संबंधी भाषाओं और लोगों से। ये पवित्र दिन है। यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ आमीन।
The choir
and Gaik Menli or Sabab Sat Milkar Gaigi Redeemer of Israel Git ke Samapti par
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We will now be blessed to hear
from our beloved prophet, President Thomas S. Monson Kostenegger. He will be followed by बाद होसे एल ओलांसो जो 70 के है हमसे बात करेंगे उसके बाद हम प्रधान बोयट के पैकर जो 12 के प्रसाद से है से सुनेंगे गायक मंडली फिर गाएगी आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड प्रेसिडेंट मॉन्सन
Hello.
Namaste.
I wonder who I should call upon to substitute for.
मैं सोचता हूँ मैं किसे कॉल करूँ मेरे अलावा यहाँ पे बात करने के लिए. अच्छा है भाई बहनों कि आप सब लोगों का स्वागत है इस जनरल कॉन्फ्रेंस जो 185th का है. ये सम्मेलन 48 सालों के अंत का हो गया है जब से मुझे डेविड ओ मैके द्वारा बुलाया गया था. वह 1963 अक्टूबर में हुआ था. ये नामुमकिन लगता है कि साल आए और चले गए. जब हम मसरूफ रहते हैं समय रफ्तार में निकल जाती है और पिछले चार महीने में मुझे रोक नहीं पाया. उस समय में महत्वपूर्ण कार्य एटलांटा जॉर्जिया मंदिर का मैं एक पर दोबारा संपूर्ण करना गया. मेरे साथ एल्डा बहन रसल बैलट एल्डा और बहन वो का भी थे. दक्षिण ज्योति के सेलिब्रेशन था उस शाम 2700 जवान पुरुष और जवान महिलाओं उसमें भाग लेते देखा. वो एक बहुत प्रमुख कार्यक्रम था और कई सदस्य को खड़े होकर ताली बजाते हुए देखा. दूसरे दिन मंदिर फिर से डेडिकेट किया गया जहां पर प्रभु का आत्मा हमारे साथ बहुत शक्तिशाली ढंग से था. अगस्त के दूसरे भाग के दौरान प्रधान हेनरी बियरिंग ने सल्वाडोर मंदिर को पुनर्स्थापित किया. उसके साथ बहन एरिंग और एल्डा बहन डीट ऑफ क्रिस्टफसन एल्डा एंड बहन विलियम रोका एंड बहन सिल्विया एल्फर्ड जो सहायक संस्था के महा है जेफरी गए थे उसके पति. प्रधान आरनी ने सूचित किया कि एक बहुत धार्मिक कार्य था. इस साल के दूसरे भाग में दौरान प्रेजेंट फ्रुफ्तोक और बहन उफ्तोक दूसरे महा अधिकारियों के साथ कॉन्सर्टो गौतमाला जाएंगे जहां वे हमारे वहां के मंदिर को समरण करेंगे. बहन और भाइयों बहनों मंदिर के निर्माण लगातार होते रहते हैं. आज मेरे सौभाग्य है कि मैं कई नए मंदिर को प्रकट करूंगा. पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिर के ज्यादा जरूरी है भी गिरजाघर के निर्माण नहीं है. मंदिरों वो स्थान है जहां पे अनंत तक के लिए रिश्तों को साथ जोड़ा जाता है. हम दुनिया भर के सारे मंदिर के लिए भारी हैं और जो हमें वो आशीष देते हैं. अगले पिछले साल वो जो मंदिर जो खराब हो गया था वो मंदिर के सिर्फ दीवारों बचे थे लेकिन हमने सोचा कि हम उसे फिर से बनाएंगे और उसको उसके अंदर भी बनाएंगे जो ये दूसरे प्रोवो में मंदिर बनेगा. अभी जो प्रोवो में जो मंदिर है अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है. ये दूसरा मंदिर भी बहुत अच्छा रहेगा. प्रोवो में वो सभी लोगों के लिए बहुत सहयोग रहेगा. मैं और भी मंदिर के बारे में बता दूं. कोलंबिया टेबेटा साउथ अफ्रीका कंचासा डेमोक्रेटिक स्टार वैली वायोमिंग.
I think I'll dedicate that one.
मैं उसे जाकर डेडिकेट करूंगा.
There's good fishing up there.
वहाँ पे 15 अवश्य ही और आगे चलते हैं पेरिस फ्रांस में भी बनाएंगे इन मंदिर के बारे में और फिर बाद में बताएंगे मैंने पिछले सम्मेलन में बतलाया है कि हमें किसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और मंदिरों को हमारे संदेशों के करीब लाएंगे पहले ही गिरजाघर के कई सदस्य के आसानी से मिलती है वह पर दुनिया में अभी भी स्थान है जहां मंदिरों दूर है सदस्यों को जाने के लिए जहां वो जाने के यात्रा को सही नहीं पाते वे उस पवित्र आनंद आशीर्वादों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो मंदिर में मिलता है इसके मदद के लिए हमारे पास है जिसे जनरल टेंपल पेट्रन असिस्टेंट फंड कहते हैं ये फंड एक भर मंदिर जाने के लिए पैसा देता है उनको कभी मंदिर नहीं जा सके और जो उस अवसर के लिए बहुत प्रतीक्षा करते हैं जो कोई भी फंड में जाता देना चाहता है उसे सामने जाता है लिफाफे में जो सकता है जो बिशप को हर महीने को अंत में दिया जाता है अब भाइयों बहनों या मेरा प्रार्थना है कि हम प्रभु के आत्मा को ज़्यादा महसूस करें जब हम आज और कल के संदेशों को सुने और चीज़ों को सीखें जो प्रभु हमें बतलाता चाहता है ये मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमेन
In our day,
इस समय पर कई लोग दुखी और अधिक व्यक्ता में रहते हैं अपने सवालों के जवाब नहीं पा पाते हैं अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते कुछ ने खुशी और आनंद के एहसास को खो दिया है भविष्यवक्ता ने बताया है कि सच्चा खुशी यीशु के उदाहरण और शिक्षा के करने के मिलती है वो हमारे उद्धारकर्ता है वो हमारे शिक्षा है और वो ही संपूर्ण उदाहरण है उसकी जिंदगी सेवा के बाहरा है जब हम अपने पड़ोसी से सेवा करते हैं वो उनकी मदद करते हैं जिन्हें जरूरी है इस कार्य में हम अपने खुद की मुसीबतों के हल भी सकते हैं जब हम उद्धारकर्ता के चेला बनते हैं हम अपने प्यार को स्वर्ग के पिता और उसके पुत्र को देते हैं वो हमें ज्यादा उसकी तरह बनाते हैं राजा बेंजामिन ने सेवा के मूल को बतलाया है कहते हुए जब हम अपने पड़ोसी से सेवा करते हैं हम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं सभी के पास सेवा और प्यार को दिखलाने का अवसर है प्रधान थॉमस एस्मंसन ने अपने जाकर राहत के पास और दूसरे की सेवा करने को कहा उसने कहा हम ये जानेंगे कि जिनके सेवा हम करते हैं उन्होंने हमारे कार्य के स्वामी के प्रभाव और महसूस किया है वे अपने जिंदगी में बदलाव को बयान नहीं कर पाते वहाँ पर इच्छा होती है विश्वास से सेवा करने की वीर नम्रता से चलने की और ज्यादा उद्धारकर्ता की तरह जीने के उन्हें धार्मिकता से समाज और आनंद वादे का सुझाव मिलता है उन्हें वही शब्दों को उस अंधे आदमी के दोबारा जिसे यीशु ने आंख की ज्योति प्रदान किया जिसने कहा मैंने जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देख सकता हूं हर दिन हमारे पास अवसर है मदद और सेवा करने के लिए सही कार्य की के करने सही समय पर देख करे बिना उन कई लोगों के बारे में सोचो जिनके पास मुसीबतों के समय और काम ये बीमारियों को लेकर जो अकेला महसूस करते हैं जो भी सोचते हैं कि उन्होंने सभी चीजों को खो दिया है तुम उन्हें मदद के लिए क्या कर सकते हो सोचो कि एक पड़ोसी जिसका कार बारिश में खराब हो गया है तुम्हें मदद के लिए बुलाता है क्या सबसे अच्छा है उसके लिए करने को कि समय सही है करने के लिए मुझे याद आया है कि समय जब हमारी परिवार साथ में अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने गया मेक्सिको शहर में वह बहुत छोटे थे हमारा बड़ा बेटा सिर्फ 2 साल का था और छोटा ही एक साल का। रास्ते पर लोगों की भीड़ थी। जब हम खरीदारी कर रहे थे, अपने बच्चों के हाथों को पकड़े हुए, हम थोड़ी देर के लिए कुछ दोनों को रुक और बिना ही जाने हमने अपने बड़े बेटे को खो दी। हम नहीं जानते थे कि वो कैसे, मगर वो हमारे साथ नहीं थे। बिना ही देर किए हम उनकी तलाश में थे। हमें ढूंढना और उसे पुकारा, बहुत ही दुख में, ये सोचते हुए कि हमने उसे जिंदगी भर के लिए खो दिया है। हमें मन में स्वर्ग पिता से ये मांगते हुए कि वो हमारी मदद करे उसके ढूंढने में। कुछ ही देर में हमने उसके पा लिया था। वो वहां था, फूलों पर, मैं खिलौने के दुकान के खिड़की के देख रहा था। मेरी पत्नी और मैंने उसके गले लगाया और चुम्मा दिया, और हमने कसम लिया कि हम अपने बच्चों पर ध्यान धरेंगे ताकि हम किसी ही को दोबारा नहीं खो सकते। हमें ये शिक्षा की अपने बेटे के राहत के लिए। हमें सबसे ये योजना बनाया कि जरूरत नहीं थी। हम तुरंत शुरू हो गए उसको ढूंढने के लिए जो गुम हो गया था। हमने ये भी सीखा कि हमारे बेटे को ये नहीं पता चला कि वो गुम हो गया था। भाइयों और बहनों, वहाँ कई होंगे कुछ कारण में हमारे नजरों के गुम हो जाते हैं और जो नहीं जानते कि वे खो गए हैं। अगर हम देर करेंगे, हम उन्हें हमेशा के लिए खो सकते हैं। कई जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, यहाँ जरूरी नहीं कि नए तरीके के किए जाएं, ये हम कार्य को किए जाएं जो मुश्किल या मांगते हैं। वे सिर्फ हमारे सच्चाई से सेवा करने की जरूरत चाहते हैं। ये सही कार्य के समय पर किया जाए, देर करने बिना। जब उधारकर्ता मोमन धर्मशास्त्र के लोगों के पास प्रकट हुए, उसने हमें एक महान उदाहरण दिया कि जिन्हों खुशी ये एहसास हो कि वो दिया है उसकी सहायक सेवा के लिए इंतजार मत करो। लोगों को सिखलाते हुए उन्होंने देखा कि वो उसकी सारी बातें समझ रहे थे। उसने उन सब को अंतरित किया कि वो अपने घर पर जाए और विचार करे और चीजों को जो उसने कहा है। उसने बताया कि वो पिता के प्रार्थना करे और अपने आप को दूसरे दिन के तैयार किए जो वो लौट आने को शिक्षा देने। जब वो समाप्त हुआ, उसने लोगों के और देखा और उन्हें विलप देखा और उन्हें चाहते थे कि वे उन्हें साथ रहें। और उसने उनसे कहा, सुनो, तुम्हारे लिए मेरा प्याला प्यारा दया से भरा हुआ है। तुम्हें में क्या कोई ऐसा है जो बीमार है, उसे यहाँ लाओ। तुम्हारे पास कोई लंगड़ा, अंधा या पंगड़ा जो निर्भर हो चंगा हो सकता चुका है, या बिहार या किसी भी प्रकार के कष्ट में है, उन्हें यहाँ लाओ और मैं उन्हें ठीक करूँगा, क्योंकि तुम पर मैं दया करता हूँ। मेरे प्याला दया से भरा चुका है। और वे अपने बीमारियों को उसके पास लाया और वो उनको ठीक कर दिया। भीड़ उनके पैरों पर झुके और उनकी आराधना और उसके पैरों को चूमा, अपने आंसू से उनके पैरों को भीगा दिया और उसके अपने छोटे बच्चों को लाने की आज्ञा दी। और उसने एक के बाद एक ओ आशीर्वाद दिया। ये एक तरीका है जो उद्धारकर्ता ने हमें दिखलाया है। उसका प्यार सब के लिए है, मगर वो किसी को नहीं भूलता। मैं जानता हूं कि हमारे स्वर्ग पिता प्यार समझता और धीर करता है। उसका पुत्र यीशु मसीह भी हमसे प्यार करता है। वो अपने भविष्यता द्वारा हमें मदद करता है। मैंने सीखा है कि भविष्यता के चेला बनने से बहुत रक्षा मिलती है। ये राहत अब भी जारी है। प्रधान मॉनसन ने कहा, प्रभु चाहता है कि हम सोचें, वे हमें चाहता है कि हम करें, वो चाहता है कि हम कार्य करें, वो हमारे गवाहियों को चाहता है, वो हमारे भक्ति को चाहता है। हमारे पास जिम्मेदारी और महान अवसर है, वो पार कई जिन्हें एक बार दोबारा जरूरी है खुशी और एहसास के अच्छे महसूस गिरजाघर के गतिविधियों से कि खुशी मिली और धर्म के विधि के कार्य से पवित्र वादों के बनने और उन्हें निभाने से। प्रभु जानता है कि हम उनकी मदद करेंगे। हमें सही कारण चाहिए सही समय पर, देर करे बिना। मैं गवाही देता हूं कि परमेश्वर जीवित है और हमारे पिता है। यीशु मसीह जीवित है और उसने बलिदान दिया ताकि हम स्वर्ग के पिता के पास वापस लौट सके। मैं जानता हूं कि वो हमारे उद्धार करता है। मैं जानता हूं कि उसके दया हम पर हमेशा है। मैं गवाही देता हूं कि भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉनसन भविष्यवक्ता है और ये गिरजाघर ही धरती पर सिर्फ सच्चा है। मैं जानता हूं कि भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ही प्रस्थापन का भविष्यवक्ता है। मैं गवाही देता हूं कि मोमन धर्मशास्त्र परमेश्वर की वाणी है, वो हमें मार्गदर्शन और आगर देता है परमेश्वर और उसके एकलौते पुत्र की तरह के ज्यादा चलने पर। मैं ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन।
I speak to the youth more personally than I usually do.
मैं युवक से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से बातें कर रहा हूँ जो मैं अक्सर करता हूँ। युवक वर्ष तुम्हारे साथ तोलूंगा। तुम अनमोल हो, मैंने तुम्हें कई देशों में देखा है। तुम प्रधान पेकक के जवान पीढ़ी से कई बेहतर हो। अब मैं 87 साल का हो। तुम आश्चर्य होगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या बदला सकता हूँ इतना बूढ़े होने पर। मैं एक विशोष शायरी को प्रस्तुत करता हूँ। बुढ़ा कौवा धीमी हो रहा है, जवान कौवा नहीं। जो जवान कौवा नहीं जानता, बुढ़ा कौवा बहुत जानता। बुढ़ा कौवा जवान कौवा से बेहतर है चीजों को जानने में। बुढ़ा कौवा जवान कौवा से ज्यादा जानता है। धीमी बुढ़ा कौवा क्या नहीं जानता है, किस तरह तेज चला जाए। जवान कौवा ऊपर नीचे उड़ता है और धीमी बुढ़े कौवे के इर्द गिर्द उड़ता है। तेज जवान कौवा क्या नहीं जानता है, कहाँ जाना है। ये शायरी विलियम वॉर्ड्सवर्थ से नहीं, मगर फिर भी वो याद रखने वाली शायरी है। उसके साथ जो दुनिया में अभी हो रहा है, नीति के स्थान के साथ कम होना, तुम जवान लोग दुश्मनों के स्थान पर बड़े हो रहे हो। हम समाचार में से जानते हैं कि स्वर्ग में युद्ध हुआ था और लूसिफा अपने साथी के साथ धरती पर भेज दिए गए। स्वर्ग के पिता की योजना के बर्बाद करना चाहता है और उन सभी के मन और कार्य को शासन करना चाहता है। मगर विरोधी मुसीबतों और बहकावे के होते हुए भी तुम्हें नाकाम को ना होना और डरना नहीं। जब मैं 17 साल का था, विद्यार्थी की तरह तैयार ही था हाई स्कूल के डिग्री लेने के लिए, कुछ कमजोरियों के साथ। जो मैंने सोचा था हमारे जिंदगी के परिस्थितियों अचानक से एक शनिवार सोप को बदल गया। दूसरे दिन हमें हाई स्कूल में बुलाया गया। रंगमंच पर एक कुर्सी और छोटा सा दूरदर्शन रखा हुआ था। स्कूल के निदेशक ने दूरदर्शन को चालू दिया। फिर हमने प्रधान फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट की आवाज को सुना, जब तक उसने बतलाया कि हवाई बंदरगाह को बॉम्ब कर दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स जापान के साथ युद्ध कर रही थी। फिर बाद में बतलाया गया दोबारा प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट की आवाज की ओर से कि हमारे देश जर्मनी के साथ युद्ध कर रहा है. उसी समय जवान लोगों की पीढ़ी की आगे की जिंदगी बिना ठिकाने का ना रहा. हमें पता नहीं था कि आगे क्या था. आज यहाँ पर युद्ध और युद्ध होने की खबरें और पूरी धरती बेचैनी में है. सुसमाचार का योजना वो है आनंद की महान योजना. योजना के लिए परिवार मुख्य है. परिवार उन जीवी शक्ति पर लायक बने रहने पर निर्भर रहती है जो तुम्हारे शरीर में है. परिवार दुनिया के लिए एक प्रकाशन, एक प्रेरित लेख पत्र जो प्रथम अधिशक्ता और 12 देवदूत के प्रसिद्ध से लिखा गया. हम सीखते हैं कि मरणशील जीव से पूर्व सारे मनुष्य जाति, पुरुष और नारी परमेश्वर की छाया में बने थे. हर एक स्वर्ग के माता पिता के प्यारे आत्मा के पुत्र या पुत्रिया है और उस तरह हर एक के पास दिव्य प्रतिकारिक और नसीब है. लिंग एक जरूरी अनोखा है और मनुष्य जीव से पूर्व बनाता है. हमें आगे जाना कि परमेश्वर ने आगे दी है कि उत्पादन की पवित्र शक्ति सिर्फ आदमी और औरत के बीच निभाई जा सकती है जो विधि पूर्वक शादीशुदा हो और पति और पत्नी की तरह. लुसिफा और उनके चेलों को जो महान सजा वो अपने आप से भरा है कि वो मरणशील शरीर से अस्वीकार होना. कई लालच जो तुम झेलते हो सबसे गंभीर है तुम्हारे शरीर से. तुम सिर्फ शक्ति नहीं रखते एक नया पीढ़ी को उत्पन्न करने में, बल्कि तुम्हारे पास चुनने की शक्ति है. तो सभी जीवित आत्मा जिसके पास शारीरिक शरीर है उसी को शक्ति मिलती है विरोधी पर. तुम लालच से कष्ट हो क्योंकि तुम्हारे शरीर प्रकृति से, मगर तुम्हारे पास शक्ति है उनसे और उसकी देवदूत से भी. उस समय जब मैं हाई स्कूल से डिग्री लेकर निकला, मेरे कई कक्षा के बच्चे युद्ध में चले गए थे. उनमें से कुछ कभी न लौटे. बाद में हम शामिल हो गए. हम अपने आगे की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते थे. क्या हम युद्ध में बचेंगे, क्या दुनिया बचेगा जब हम वापस लौटेंगे. मैं जानता था कि मुझे सेना में जाना था, तो मैं कैलिफोर्निया गया उड़ाने को सीखने के लिए. उस समय मेरे पास मजबूत गवाही नहीं था कि सुसमाचार सच्चा है, मगर मैं जानता था कि मेरे सेमिनरी अध्यापक एबल एस रिच और जॉन पी लिली वाइट जानते थे कि वो सच्चा है. मैंने उन्हें गवाही देते हुए सुना था और मैंने उन्हें विश्वास किया. मैंने अपने आप सोचा कि मैं उनके गवाहियों पर निर्भर रहूंगा जब तक मेरे पास खुद ही है, और वही मैंने किया. मैंने कुलपति का आशीर्वाद के भविष्य में सुना था, मगर मुझे प्राप्त नहीं हुई थी. हर स्टेक में वहाँ एक कुलपति नियुक्ति है जिसके पास भविष्यवाणी की आत्मा और प्रकट होने की क्रिया की आत्मा है. उसके पास व्यक्तिगत और व्यक्तिगत आशीर्वाद देने के अधिकार होते हैं. उन्हें देने को जिन्हें उनके बिशप से अनुमति मिलती है. जबकि कुलपति का आशीर्वाद बहुत व्यक्तिगत है, मैं तुम्हें अपने से एक छोटे से बात बतलाता हूँ. तुम्हें पवित्र आत्मा के फुसफुसाहट से मार्गदर्शन मिलेगी और तुम्हें खतरे की चेतावनी मिलेगी. अगर तुम उस चेतावनी पर अमल करोगे, स्वर्गीय पिता तुम्हें आशीर्वाद देगा ताकि तुम दोबारा अपने प्यार करने वाले से मिल सकोगे. चाहे वह शब्द अगर बहुत ही छोटा हो, वो मुझे पूरे बड़े कागज की तरह लगा. मुझे आशीर्वाद मिलती युद्ध से लौटने के अगर मैं अपने वादों को निभाता और अगर मैं पवित्र आत्मा के प्रेरणा को सुनता. जबकि मुझे वो उपहार बपतिस्मा पर ही मिल चुका था, मुझे अभी तक पता नहीं था कि पवित्र आत्मा क्या था या प्रेरणा किस तरह कार्य करती है. मैंने वो पाया जो मुझे जरूरी था मोमन धर्मशास्त्र के प्रेरणा को जानने के लिए। मैंने उसे पढ़ा। स्वर्गदूत पवित्र आत्मा के समर्थ से बोलते हैं, इसीलिए वे मसीह की वाणी बोलते हैं। इसीलिए मसीह की वाणी को प्याला पियो, क्योंकि देखो मसीह की वाणी तुम्हें बतलाएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। शायद महान कार्य को मैंने मोमन की धर्मशास्त्र को पढ़ने से सीखा है कि आत्मा की आवाज महसूस से आती है, नहीं कि आवाज से। तुम सीखोगे कि जिस तरह मैंने सीखा है, सुनो उस आवाज को महसूस किया जाता है, नहीं कि सुनना। निफाई ने अपने बड़े भाई से कहा, तुमने एक स्वर्गदूत को देखा और उसने तुमसे बातें की। हाँ, तुमने समय समय पर उसकी वाणी को भी सुना। उसने तुमसे धीमी आवाज में बातें की, लेकिन तुम्हारे ध्यान उस ओर नहीं गया और उसकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ आलोचक ने कहा कि ये व्यक्तिगत गलत है, क्योंकि तुम शब्दों को सुन सकते हो, तुम महसूस नहीं कर सकते। मगर अगर तुम कुछ भी धार्मिक वार्तालाप से जाते हो, तुम जानते हो कि सही शब्द उसके बतलाने के लिए जो स्थान ले सकता है वो शब्द है महसूस। पवित्र आत्मा का उपहार अगर तुम सम्मित हो, मार्गदर्शन करेगा और बचाएगा और तुम्हारे कार्य को भी सही करेगा। ये एक धार्मिक आवाज है जो मन में आती है, एक सोच या महसूस की तरह तुम्हारे दिल में रहता है। और प्रभु ने ओलिवा कार्डरी को बताया कि सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे मन और दिल में बतलाता हूँ पवित्र आत्मा से जो तुम पर आएगा। ये नहीं है कि तुम जिंदगी में कोई गलती नहीं करोगे, मगर तुम कोई बड़ी गलती नहीं करोगे पहले चेतावनी के बिना पवित्र आत्मा के प्रेरणा से। ये वादा गिरजाघर के सभी सदस्यों के लिए है। कुछ बहुत बड़ी गलती करेंगे, सुसमाचार के नियम को नहीं मानेंगे। यह समय है तुम्हें प्रेषित करना, पश्चाताप और पूरी तरह से क्षमा करना को याद दिलाता है कि ताकि तुम दोबारा साफ बन सको। प्रभु ने कहा, सुनो, जो अपने पापियों से प्रेषित कर चुका है उसी को क्षमा किया जाएगा और मैं प्रभु उन्हें कभी नहीं याद करता। अगर विरोधी तुम्हें बंदी से ले जाए कुचाल की ओर, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हारे पास वो चाबी है जो दरवाजे को अंदर से खोल सकती है। तुम साफ हो सकते हो उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बलिदान से। तुम मुसीबत के समय सोचते हो कि तुम बचने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने गलती की है बड़ी या छोटी, और तुम सोचते हो कि अब तुम खो गए हो। ये कभी सच नहीं है। सिर्फ पश्चाताप भर सकता है जो पाप होता है, मगर पश्चाताप भर सकता है जो दर्द मिलता है, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम उस चाल चलन में शामिल हो रहे हो जिसमें तुम्हें शामिल नहीं होना है, या अगर तुम उन लोगों के साथ शामिल हो रहे हो जो तुम्हें बुरे मार्गदर्शन के ओर ले जाते हैं, वो समय है तुम्हें अपने आजादी और अपने चुनने की शक्ति को इस्तेमाल करने का। आत्मा की आवाज को सुनो और तुम्हें भूल भुगतता से नहीं ले जाएगा। दोबारा मैं कहता हूँ कि आज युवा विरोधी के रागे में मरणशीलता के स्तर से गिरते हुए पड़ रहे हैं, मगर प्रभु की सेवक की तरह मैं वादा करता हूँ कि सुरक्षा मिलेगी और विरोधी के हमले से बचाव मिलेगा अगर तुम पवित्र आत्मा से मिली प्रेरणा को सुनोगे। संकोच से कपड़े पहनो, धीमी आवाज में बातें करो, अच्छे गीत को सुनो, अमन रणशील और व्यक्तिगत रूप से गिरने वाले कार्य से बचो। अपनी जिंदगी को निपुणता से और अपने आप को आज्ञा दो कि वो विश्वासी रहे, क्योंकि हम तुम पर आशा करते हैं, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। स्वर्ग के पिता तुमको हमेशा रक्षा करता है। मेरा गवाही की शक्ति बदल गई जिस समय मैंने ये महसूस किया, जब मैं सेमिनरी के अध्यापक के गवाही पर मैं निर्भर था। आज मैं दूसरों पर निर्भर हूँ जब मैं चाहता हूँ, और पोलियो के कारण जो मुझे बचपन से है मगर धार्मिक स्थितियों के साथ से नहीं। मैं विश्वास करने लगा हूँ समझने के लिए और उद्धारकर्ता यीशु मसीह और उनके सुसमाचार के अनमोल सच्चाई को जान चुका हूँ। उसके एक खास गवाही की तरह मैं गवाही देता हूँ कि ये जो यू सांस्कारिक जीवन से पूर्व को जीवन में शुरू हुआ था वो खास है। लुसेफा की हार होगी। हमने पहले कौओं के बारे में बात की थी। युवा को लक्षणता के साथ सभी मार्गदर्शन में नहीं चलना चाहिए आगे के रास्ते को जानने बिना। वहाँ पर लोग हैं जो रास्ते को जानते हैं। इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर अपने भविष्य वक्ताओं पर अपना मरम बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। प्रभु ने अपने गिरजाघर की चाबियों और सलाहकार के सिद्धांत पर संगतित किया है। गिरजाघर में 15 पुरुष बने रहते हैं, भविष्यवक्ताओं, देवदूत और प्रकट करने वाले। प्रथम अध्यक्षता के सदस्य और 12 पुरोहित के परिषद गिरजाघर को जरूरी मार्गदर्शन देने के लिए के सभी चाबियों को रखते हैं। वहां भविष्यवक्ता प्रधान मॉनसन है जिसे सभी चाबियों को इस्तेमाल करने का अनुमति है। सुसमाचार के लिए जरूरी है कि प्रथम अध्यक्षता और 12 के परिषद सलाह से कार्य करने और उन सब सलाहकारों के फैसला एकमत हो और वो है जो होता है। हम प्रभु में विश्वास करते हैं कि वो हमें सिर्फ उसी की कार्य को करने के लिए मार्गदर्शन देगा और हमें ढूंढेगा। प्रथम अध्यक्षता और 12 के प्रशासिशा जानते हैं कि उसने हमारे ऊपर बहुत विश्वास किया है व्यक्तिगत और सलाह मिलकर। कभी कभी हम लालच में पड़ सकते हैं वो सोचने जो जिस तरह मैं युवा में सोचता था, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों हो रही है दुनिया का अनंत हो जाएगा। दुनिया का अंत आने से पहले मुझे वो करना है जो मुझे करना चाहिए, वो सही नहीं है। तुम आगे की ओर देख सकते हो सही कार्य को करने के लिए, शादी करने को और परिवार बनाने को, अपने बच्चों और नाती पोती को देखने का, शायद पर नाती पोते भी। तुम अगर इस सिद्धांत को निभाओगे तुम्हारे ख्याल रखेंगे और बचाएंगे और तुम पर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से यह जानोगे कि किस ओर जाना है। इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा तुम इस सच्चाई को जानेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
And
We are grateful to the Tabernacle.
हम टैबरनेकल गायक मंडली और उनके संचालनकर्ता और ओगन बजाने वाले के आभारी हैं सुंदर संगीत के लिए जो हमने आज सुबह प्रदान किया है. हमारा अंतिम भाषण वक्ता इस बैठक के लिए रहेंगे प्रधान दीरा एफ उगडोव, प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार. प्रधान उगडोव के टिप्पणियों के बाद गायक मंडली गाएगी प्रेस फॉरवर्ड सेंस. सत्र के एल्डर लोअल एम स्नो द्वारा प्रार्थना की जाएगी और सम्मेलन को इस शाम 2 बजे तक स्थगित किया जाएगा. प्रेसिडेंट उगडोव.
मैं सभी को बतलाना चाहता हूँ जो छोटे हैं कि जो उनको बतलाया गया है वो उन्हें सुने और उनका आज्ञा करें. मौजूद दुनिया के जाने माने महान वैश्वक्ता फेरो की पुत्री द्वारा पाला गया था और अपने जीवन के प्रथम 40 वर्ष उसने हम प्रेजेंट थॉमस मंसन जो बतलाया है मंदिरों के विषय में हम बहुत आभारी है और हम जानते हैं कि वह हमारे भविष्यवक्ता है. मैं एक और भविष्यवक्ता के विषय में बतलाना चाहता हूँ जो बहुत बढ़िया प्रोफेट था जिसका नाम मोसेस था. वह एक महान भविष्यवक्ता था. फेरो की पुत्री द्वारा पाला गया था और अपने जीवन के प्रथम 40 वर्ष उसने इजिप्ट के राज्य घराने में बिताया था. उसने खुद अनुभव किया था उस प्राचीन राज्य की महिमा और शान को. वर्षों बाद एक दूसरे के पहाड़ के ऊपर शक्तिशाली इजिप्ट के चमक और महानता से दूर मौजस परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा हुआ था और उसके सामने इस भेंट के द्वारा परमेश्वर ने मौजस को अपने हाथों की कारीगरी दिखाई, अपने कार्य और महिमा का एक झलक उससे दिखाया. जब दृष्टि समाप्त हुई मौजस धरती पर गिर पड़ा कई घंटों तक. जब अंत में उसे शक्ति मिली उससे कुछ एहसास हुआ जो अपने वर्षों फेरों ने दरबार में उससे कभी नहीं सूझा. उसने कहा वो जानता था कि मनुष्य कभी भी नहीं है, हम अपने अनुमान से कम है. जितना ज्यादा हम विश्व के बारे में सीखते हैं उतना ही ज्यादा हम समझते हैं थोड़ा सा भी जो मोसेस जानता था. विश्व इतना बड़ा अधनिक शानदार है. रात की आसमा का नजारा एक सुंदर गवाही है इस सच्चाई का. कुछ बातें हैं जिससे मुझे आश्चर्यचकित कर दिया इस कदर, जैसे अंधेरी रात में समुद्र और जमीन के ऊपर उड़ना और खिड़की से बाहर देखना. सितारों की जांच करने वालों ने विश्व को सितारों की गिनती करने के लिए कोशिश की है. इस खोज प्राचीन भविष्यवक्ता इनो की घोषणा के सामने है. उसने कहा कि अगर मनुष्य के लिए संभव होता है धरती के खुद तुड़कों को गिनना, ये चाहे इस तरह के सैकड़ों धरतियों शुरुआत नहीं होता परमेश्वर की रचनाओं की गिनती का. जब हम परमेश्वर की सच्चाओं रचनाओं को के बारे में सोचते हैं ये समझना आसान है कि महान राजा बेंजामिन ने लोगों को सलाह दिया था कि वो हमेशा परमेश्वर की महान को और अपनी खुद की तुष्टता को. मगर चाहे मनुष्य भी नहीं है मैं फिर भी आश्चर्य में हूँ और अपने में सोच परमेश्वर की नज़र में आत्माओं के मूल्य महान है. और जब हम विश्व के बड़े आकार को देखते हैं, मनुष्य क्या है अगर रचना की महिमा से मिलान किया जाए। परमेश्वर ने खुद कहा है कि हम वो वजह है जो उसने विश्व को रचा। मनुष्य का ये एक खानदान है, परमेश्वर की तुलना में मनुष्यों के कुछ भी नहीं, फिर भी परमेश्वर के लिए हम सब कुछ हैं। जब अनंत रचना से तुलना की जाए, हम शायद कुछ नहीं देखते। हमारे अंदर अनंत चिंगारी जल रही है, हमारे पास उन्नत जीवन की ना बयान हो पाने वाला वादा है, ना खत्म होने वाली दुनिया हमारे कब्जे में, और ये परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि हम उसे पा सकें। वो वादा शैतान जानता है कि उसका एक औजार परमेश्वर के बच्चों को धोखा देने का है, कि मनुष्य को तसल्ली दिलाओ कि वो खंडित इंसान है। कुछ लोगों के लिए वो उनके घमंडीपन से जीता है, उन्हें अच्छा बोलना और प्रशंसा करने, अपने खुद में महात्मा और शक्ति का विश्वास दिखलाता। वो उन्हें बताता है कि वो मामूली नहीं रहे और कि उनकी क्षमता, जमनसी अधिकार या सामूहिक काम वो अपने आसपास की चीज़ों से बेहतर कर देखते हैं। वो उन्हें समझने में मजबूर करता है कि वो उन्हें किसी के कानून को सुनना नहीं है और किसी की मजबूतों मुसीबतों की परवाह नहीं करना है। अब्राहम लिंकन को एक शायरी पसंद थी जिसका बोल है, और कि मरणशील लोगों की आत्मा घमंडी रहे, एक आराम से उड़ने वाला पत्थर की तरह आसमान में, बिजली की एक चमक मौजों का बिखरना, मनुष्य जीवन से कब्र के आराम में पहुंचता है। यीशु मसीह के शिष्य समझते हैं कि आनंद की तुलना में हमारी उपस्थिति इस मरणशील जीवन में सिर्फ एक छोटे क्षण के लिए है, अनांतरिक और समय में। वो जानते हैं कि एक आसान का सही मूल्य दुनिया के बड़े मूल्य सम्मेलन से ताल्लुक नहीं रखता। वो जानते हैं कि तुम विश्व के सभी तरह से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और उससे स्वर्ग में तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी। वो जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे वो है जो बच्चे की तरह आज्ञाकारी, विनित, दीन, संशील, प्रेम से पूर्ण परिपूर्ण बनेंगे, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएंगे वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐसे शिष्य भी समझते हैं कि जब तुम अपने साथ की सेवा करते हो तब तुम अपने परमेश्वर की सेवा करते हो। हमें बुलाया नहीं गया है। शैतान का धोखा देने का एक और तरीका है निराशा। वो कोशिश करता है हमारे दृष्टि को अपने खुद में तृतीयों ठिकाना, जब तक कि हम संदेह नहीं करने लगते कि हमें कुछ योग्यता। वो बताता है हमें कि हम बहुत छोटे हैं पहचानने के लिए कि हमें भुला दिया गया है, खास करके परमेश्वर द्वारा। मुझे आपके साथ एक निजी अनुभव बांटने दे जो शायद उन्हें सहायता दे, जो मामूली भुलाए हुए अकेले महसूस कर रहे हैं। कई वर्ष पहले मैं यूनाइटेड स्टेट्स हवाई सेना में विमान चालक की प्रशिक्षण लिया। मैं अपने घर से बहुत दूर था। एक जीवन पश्चिम जर्मनी का सैनिक में पैदा हुआ जो पूर्व जर्मनी में बड़ा हुआ और अंग्रेजी भाषा बहुत ठीक से नहीं बोलता था। मुझे अच्छी तरह अपनी परीक्षण स्थित तक ये यात्रा को टेक्सास में था याद। मैं एक हवाई जहाज पर था, एक यात्री के बगैर मैं बैठ था जिसका गुरु दक्षिण था। मुझे उसकी भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे अब तक गलत भाषा सिखाया जा रहा था। मैं भयभीत था ये जानकर कि मुझे बेहद मांग की ऊंचे विमान संचालक प्रश्न से मुकाबला करना था जिनकी अंग्रेजी मात्रा भाषा थी। जब मैं हवाई स्थल पहुंचा बिग स्प्रिंग टेक्सास के छोटे शहर में, मैंने अंतिम दिन संसखा को ढूंढा और पाया भी, जिसमें कुछ बेहतर सदस्य थे। भरे कमरों में मिलते हवाई स्तर पर उसकी वो सदस्य को एक छोटे सभागार बने रहे थे जो गिरजाघर का टिकाऊ जगह बनाया गया था। उन दिनों में सदस्य ही नए निमंत्रणों को बनने को मजबूर हुआ करते थे। दिन प्रतिदिन अपना विमान चलक कर प्रशिक्षण में भाग लेता और ज्यादा पढ़ाई करता, फिर अपना व्यर्थ समय में सभागार को बनाने में बिताता। वहाँ मैंने सीखा कि बहुत समय नीचे कम कदम नहीं पर लकड़ी का एक टुकड़ा है। मैंने नीला मारते समय बच्चों के साथ जरूरी अनुगता बचने वाले करने को सीखा। मैंने इतना समय सभागार पर काम करते हुए बिताया कि शाखा पढ़ा जो हमारे विमान उधरने के लिए सीखते थे ने चिंता जाहिर किया कि शायद मुझे ज्यादा समय पढ़ाई में बिताना चाहिए। मेरे दोस्तों और साथी वेदर विमान चलाकों ने खुद को वेसर के समय के कार्यों जुटाया था। मैंने अपनी भाषा को सीखा और संडे स्कूल में पढ़ाया। उस समय में बिग स्प्रिंग उसके नाम से बचाए एक छोटा मामूली और बेनाम जगह था, और मैं अक्सर वैसा महसूस करता था अपने लिए मामूली, बेनाम और काफ़ी अकेला। फिर भी मैंने कभी एक बार नहीं भूला सोच कि प्रभु ने मुझे बुलाया भूला दिया है या क्या वो मुझे यहाँ पर ढूंढ पाएगा। मैं जानता था स्वर्ग पिता से नहीं जानना चाहते कि थे मैं कहाँ था। विमान चलाक प्रश्न कक्षा में मैं कितना आगे था या गिरजाघर में मेरी नियुक्ति क्या थी, उसके लिए जरूरी था कि मैं अपने हित में सबसे बेहतर था रहा था, कि मेरा दिल उससे प्रेम करता था और कि मैं अपने आसपास लोगों के मदद करना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैं अपने हद में सबसे बेहतर करूंगा तब ठीक रहेगा। प्रभु परवाह नहीं करता कि हम संघे मरमर के महल में काम करते गुजारे या अस्पताल में। वो जानता है कि हम कहाँ हैं, चाहे कितने विमरता हमारे परिस्थितियाँ हो, वो इस्तेमाल करेंगे अपने तरीके से। परमेश्वर जानता है कि कुछ बहुत महान आत्माएं जो कभी जीवित थे वो थे, जो कभी इतिहास की कहानियों पर नहीं पाए जाएंगे। वो आशीर्वाद भरे विमरता लोगों है उधारकर्ता का उदाहरण। ऐसा एक दंपति था मेरे एक दोस्त के माता पिता, जिन्होंने इस उदाहरण को पेश किया मेरे लिए। पिता पति युटा के एक लोहे के कारखाने में काम करते थे। जब अन्य कर्मचारी ने यह देखते वो उन पर हंसते और विश्वास को ललकारते। जब भी वो लोग ऐसा करते वो उनसे अच्छी तरह से निश्चयपूर्वक बातें करते। वो उनके दूरवर्तन से ना गुस्सा या परेशान होता। वर्षों बाद उनमें से एक छेड़ने वाला बहुत बीमार हो गया और मर गया। गिरजाघर के विश्वासी सदस्य के पास मनोरंजन का या धन की पृथ्वी नहीं थी, मगर उसके प्रभाव ने उन सब पर गहरा असर डाला। उन्हें जानते थे। वो एक इंडस्ट्रियल घंटा में मारा गया। एक ही वर्ष के अंदर उसकी विधवा दिमाग की सर्जरी से गुजरी, जिससे वो चल नहीं सकती, मगर लोग उसके साथ समय बिताने पसंद करते हैं, क्योंकि वो सुनती है, वो याद रखती है, वो ख्याल रखती है। लिखना नहीं जानती, वो अपने बच्चों और नेतपोते से फोन नंबर याद रखती है। वो प्रेम से जन्मदिन और साल गिरजाघर याद रखती है। जो उनसे भेंट करते हैं, वो जीवन और खुद को बारे में बेहतर महसूस करते हैं। वो उनसे प्रेम करते महसूस करते हैं। वो जानते हैं, वो कभी शिकायत नहीं करती। उनके एक दोस्त ने कहा कि ये महिला में से एक है जो यीशु मसीह के प्रेम को जानती है और उनकी तरह रहते हैं। ये दंपति शायद प्रथम कहने वाले होते कि वो दुनिया के लिए बहुमूल्य नहीं है, मगर प्रभु दुनिया से अलग तराजू इस्तेमाल करता है एक आत्मा को वजन तोड़ने के लिए। वो इस विश्वासी दंपति को जानता है, वो उनसे प्रेम करता है और उनके कार्य उनमें मजबूत विश्वास का एक जीवित गवाही है। भाई और बहनों, शायद ये सच है कि मनुष्य का कुछ भी नहीं है विश्वास की तुलना में। कभी कभी हम मामूली, बेनाम, अकेला या भुलाए हुए महसूस करते हैं, मगर हमेशा याद रखना, तुम उनके लिए बहुमूल्य हो। अगर तुम्हें इस पर कोई शक हो, तो इन चार दिव्य सिद्धांतों पर गौर करो। पहला, परमेश्वर विनम्रता और आज्ञाकारी से प्रेम करता है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। दूसरा, प्रभु अपने सुसमाचार की सच्चाई निर्बल और साधारण के हाथों दुनिया में प्रचार करने के भरोसा में है। उन्होंने दुनिया के निर्बल को चुना, सामने आए और बुलावा और मजबूत कर हराए, और घटे को निर्बल बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। तीसरा, चाहे जहां भी तुम रहो, चाहे तुम्हारे परिस्थिति कितने विनम्र हो, तुम्हारे नौकरी कितनी छोटी हो, तुम्हारे काबिलियत चाहे कितने कम हो, चाहे तुम्हारे रूप कितना साधारण हो, या गिरजाघर में तुम्हारी नियुक्ति कितनी छोटी देखी जाए, तुम अपने स्वर्ग पिता की नजरों में छुपे नहीं हो। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारे विनम्रता दिल को जानता है और तुम्हारे प्यार और दया को कार्य को भी। साथ में ये एक आनंद गवाही बनता है तुम्हारे वफादारी और विश्वास का। चौथा और अंतिम, कृपा समझिए कि जो तुम देखते हो, देखोगे और अनुभव करोगे, अभी वो अपना आनंद में भी होगा। तुम अकेलापन, दुख, पीड़ा या निराशा हमेशा नहीं महसूस करोगे। तो हमारे पास परमेश्वर का वादा है कि वो कभी ना हमें छोड़ेगा या त्यागेगा, अगर उसने प्रेम करेगा। उस वादा पर आशा और विश्वास करो। अपने स्वर्ग के पिता से प्रेम करो और उनका चेला बनना सीखो वाणी और कर्म में। आश्वस्त करना कि अगर तुम सिर्फ झेलो, उनमें विश्वास करो और आज्ञाओं का पालन करो, करने में विश्वासी रहो, एक दिन तुम अपने आप अनुभव करोगे उन वादाओं को जो देवदूत पॉल को दिया था। वो बातें आने अंत आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बताएं मनुष्य के चित में नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। भाई और बहनों, विश्व में सबसे शक्तिशाली जीव है तुम्हारे आत्मा का पिता। वो तुम्हें जानता है, वो प्रेम करता है। परमेश्वर तुम्हें सिर्फ कुछ समय के लिए जीवित एक छोटे स्थान पर रहने वाला मनुष्य की तरह नहीं देखता। वो तुम्हें अपने बच्चे की तरह देखता है। वो तुम्हें कुछ बनने के काबिल और किसी खास वजह के लिए बना देखता है। वो तुम्हें बताना चाहता है कि तुम उसके लिए बहुमूल्य हो। हम सब विश्वास करें, भरोसा रखें और अपने जीवन को ऐसा जिए कि हम अपना सच्चा आनंद योग्य को और संभवता को समझें, हम योग्य रखें कि बहुमूल्य आशीर्वाद के लिए के पिता हमारे लिए रखा है। मेरा प्रार्थना है उनके पुत्र के नाम से, यीशु मसीह की ही, आमीन।
Dearest,
ये हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और दुनिया भर से दुनिया घर में आपके बच्चे इकट्ठा हुए हैं कि हम आपके वाणी को सुन सके, कि वो हमारे हृदय में जाए और जो भजन हमने सुने हैं, और हम बहुत आभारी हैं सभी के लिए जो जिन्होंने इन वाणी को सुना है और जो आगे पढ़ेंगे और देखेंगे इस कॉन्फ्रेंस को, कि आप उन पर अपना आशीष उंधेलें, उन सभी पर, परिवारों में और एक सभी को कि आप उन पर अपना शक्ति उंडाले और आप उनको मदद करें कि वो आपके वाणी को सुन सके और आप उनको मजबूत बनाएं और शक्ति दें और हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते दुनिया भर में जो आपके मंदिर में जाना चाहते हैं कि उन्हें आशीर्वाद मिले कि उन सभी को बचाए जो मर चुके हैं और उन सभी को कि वे आगे बढ़े और आपके आगे का पालन करें और ये सभी यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ आमीन.
This has been the first
Gereja Antim Dino ke Santan ka 181st Arthur Parshik Mahasammelan ki Prarthna Sabha hai. Bhashan karta Gereja kar ke maha adhikariyon aur maha pad adhikariyon mein se sune gaye the. Moment Tabernacle Gayak Mandali dwara sangeet pradan kiya gaya tha. Bonneville Distribution dwara is prasan ke roop mein janta seva ke roop mein kiya gaya hai. Is karyakram ko koi bhi abhilekhan prata प्रतिलेखन या इस्तेमाल बिना लिखित अनुमति का बना है.